کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مل کر ایک بابا زبل درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومن کرام، سب سے پہلے ہم پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ماہ مبارک رمضان میں علوم محمد وآل محمد کو اور علوم قرآن کریم کا بھی ختم بیان کر سکے، اور انشاءاللہ سب سے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہو سکے، اور انشاءاللہ اس کو سننے والے جو مومنین ہیں وہ بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں، اور جتنا یہ پیغام عام کر سکتی ہوں عام کرنے کی کوشش کریں. دوسرا شکریہ میں آپ تمام مومنین کا بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک ہمیں دیا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا. اور ہم دوبارہ سے یہ اعلان کی صورت میں بھی ایک بات عرض کرنا چاہیں گے کہ جن مومنین کے کچھ سوالات ہوں ہمارے دروس سے ریلیٹڈ، یا درست چاٹ کر بھی ہو لیکن اگر ہم شامل کر سکیں تو انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی ہم کوشش کریں گے. کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان بہت ساری چیزوں کی ہم عادت بنانا چاہتے ہیں، اور جیسے نماز شب کی عادت ہے اسے اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہتی ہے اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. مشکل ہوتا ہے کہ اسے استمرار دیا جائے اور اسے ریگولرلی انجام دیا جائے. تو آپ کیا فرماتے ہیں، کیا کیا جائے اس سلسلے میں؟ اچھا، ہم نے تو خود یہاں پر نماز شب کی مثال دے دی لیکن انہوں نے کوئی مثال نہیں دی تھی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ چیز واجبات میں سے ہے تو بہرحال انسان کو ریگولرلی انجام دینا ہے. اگر وہ نماز پنجگانہ ہے یا روزے ہیں یا خمس ہے یا زکوٰۃ ہے یا کوئی بھی ایسی عبادت ہے جو واجب عبادت ہے، تو اسے تو بہرحال انسان کو انجام دینا ہی ہے. کیونکہ اس کے بارے میں اگر انسان اس طرح سے سوچے کہ اگر میں نے یہ انجام نہیں دیا اور خدا نخواستہ اسی کیفیت کے اندر انسان کی موت واقع ہو گئی، تو انسان کا حساب و کتاب بڑا سخت ہوگا. اس لیے وہ چیزیں کہ جو پروردگار نے واجب قرار دی ہیں اور اس کو انجام نہ دینے پر آتش جہنم ہے، عذاب ہے، لہٰذا اس کو سوچتے ہوئے انسان بھرپور طریقے سے کوشش کرے کہ کم از کم واجبات میں اپنی زندگی میں سارے ادا کر سکوں. جہاں تک مصیبات کا تعلق ہے تو نماز شب ہو یا نماز نافلہ ہو یا نماز غفیلہ ہو، اچھی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی میں شروع کرے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب انسان نماز شب مثال کے طور پر پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ 11 رکعت ہی نماز شروع کرے اور کہے کہ نہیں مجھے ہر شب 11 رکعت ہی نماز پڑھنی ہے اور سارے آداب کے ساتھ سارے مصیبات کے ساتھ پڑھنی ہے. تو شاید ہو سکتا ہے کہ شروع کے دنوں میں تو بہت جوش ہو، اگر کسی سے اس کے فضائل سنے ہیں اور اس کا ثواب سنا ہے، اچھی بات ہے کہ انسان آغاز کرے اور بھرپور جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ آغاز کرے، لیکن اس کو استمرار دینا اور اس کو ریگولرلی انجام دینا اتنا آسان نہیں ہوتا. کیونکہ ایک مستحب عبادت ہے جو ویسے بھی واجب نہیں ہے، اور پھر انسان دوسری طرف سے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ 11 رکعت اتنی بڑی نماز ہے، میں نے شروع تو کر دی لیکن اب اس کو کنٹینیو کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو علماء کرام عرفا اس کے اندر جو بات بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جو مستحب کام کرنا چاہ رہا ہے اگر اسے کنٹینیوشن کے ساتھ انجام دینا چاہتا ہے، جیسا کہ بہتر بھی یہی طریقہ ہے کہ انسان استمرار کے ساتھ اسے انجام دے، تو مناسب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ اسے شروع کرے. जिस तरीके से बच्चे को जब स्कूल भेजा जाता है तो डायरेक्ट उसको मैट्रिक में नहीं बिठा दिया जाता, उसको पहली क्लास से शुरू करवाया जाता है। जब वो पहली क्लास अच्छी तरीके से समझने का आदी हो जाता है तो फिर दूसरी क्लास में, फिर तीसरी क्लास में, फिर इसी तरीके से आगे वाली क्लासों में। तो नमाज़-ए-शब अगर इंसान शुरू करना चाहता है तो 11 रकत की अगर नमाज पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है और इसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करें। लेकिन अगर इंसान कंटिन्यू नहीं कर सकता तो कम से कम 3 रकतें जरूर नमाज़-ए-शब की पढ़े और रेगुलरली पढ़े। उसके बाद 3 के बाद 5 करना चाहे, उसे 7 करना चाहे, 9 कर दे और फिर 11 रकत की नमाज इस तरीके से अंजाम दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि जो आदत कायम की है नेक आमाल करने की, इबादत करने की, उस आदत के अंदर मजबूती आ जाएगी और फिर वो आदत टूटेगी नहीं। दुरूद पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। चूंकि हमारा मौजू मुनफरिद रमजान और मुनफरिद जिम्मेदारियों के उनवान से, लिहाजा मैं सोच रहा था कि ये जो रमजान हमारा आया है इसमें कौन कौन सी मुनफरिद चीजें अब हमें देखने को मिल रही हैं। तो अब तक जो हमारी गुफ्तगू के अंदर बातें आती रही उसमें माशी मुश्किलात भी आई हैं, उसके अंदर घर के अंदर जो बैठे हुए अफराद हैं लॉकडाउन के अंदर उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती है, इस हवाले से बातें बयान हुई। एक और चीज जो हम महसूस कर रहे हैं वो ये है कि लॉकडाउन की सूरत हाल के अंदर और कोरोना वायरस के बाद जो दुनिया तब्दील हुई है, बिलखसूस माशी तौर पर जो बदहाली पैदा हुई है, उसके बाद बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर ये मनाजर देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से जो तरक्की पजीर ममालिक हैं और जो तरक्की के रास्तों पर गामजन ममालिक हैं, उन ममालिक के अंदर बतौर खास ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि वो राशन की तलाश में है, वो कहीं ना कहीं से सदका खैरात की तलाश में है। और अगर इंसान वाकई उस तरह से मुस्तहिक हो और जरूरतमंद हो तो जाने में कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमने पहले भी अर्ज करने की कोशिश की थी कि इंसान कोशिश ये करे कि इससे जितना परहेज कर सकता है परहेज करे। मौला मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुअज्जिल फरजहुम, इरशाद फरमाते हैं। बड़ा खूबसूरत इरशाद उनका, दो जुमले इरशाद फरमाए, फरमाए एहतज इला मन शिता तकुन असीरा वस्तग्नि अम्मन शिता तकुन नजीरा। फरमाया देखो जिसके सामने हाथ फैलाने हैं तुम फैला लो, लेकिन याद रखो फिर उसके बाद उसके असीर शुमार हो गए, कोई उसके गुलाम हो गए। और अगर तुम उससे बेनियाज हो जाते हो और तुम्हें उसके सामने अपने हाथ फैलाने की जरूरत महसूस नहीं होती, या तुम जितना बच सकते हो बचने की कोशिश करते हो, तकुन नजीरा तो तुम उसके हममिसल हो जाओगे। तो तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी नामूस और तुम्हारी आबरू बचे रहेगी। इसलिए भरपूर इंसान कोशिश करे कि जितना इन चीजों से बच सकता हो बचने की कोशिश करे, बल्कि जितना परवरदिगार ने इस्तेआत दी है उतना खर्च करे। और बहरहाल मरातिब के एतबार से फर्क होता है, कभी कभार इंसान को अपने मरतबे से ज्यादा बेहतर अफराद भी मांगते हुए नजर आते हैं तो इंसान उनको देता हुआ भी शर्म महसूस करता है कि इनकी हालत तो मुझसे बेहतर है तो मैं इनको क्या दूं। लेकिन बहरहाल माशरे के अंदर दीगर अफराद भी होते हैं कि जिन्हें कुछ अगर कलील गजा भी दे दी जाए तो उस पर भी शुक्र अदा करते हैं और उन्हें उसकी भी जरूरत होती है। तो ऐसे अफराद की इंसान मदद करे, जितना मदद करेगा इंशाअल्लाह परवरदिगार उसके रिस्क में मजीद और वसअत अता फरमाते जाएगा। नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद मुअज्जिल फरजहुम, बाकायदा दुआ फरमाया करते थे और सहाबा का मजमा था। उस मजमे के दरमियान नबी अकरम ने दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फक्र वल कुफ्र, परवरदिगारा मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूं और तेरी पनाह में आना चाहता हूं किन दो चीजों से बचते हुए। फरमाया मैं गुर्बत से और कुफ्र से बचते हुए तेरी पनाह में आना चाहता हूं, फकीरी से और कुफ्र से बचते हुए तेरी पनाह में आना चाहता हूं। किसी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं, क्या फक्र और कुफ्र दोनों बराबर हैं? नबी खुदा ने शाह फरमाया नाम हाँ ये दोनों बराबर हैं। यानी अगर आम आवाम की बात की जाए तो कभी कभार आवाम अपना दीन अपना ईमान बेच देती है पैसों की खातिर। जाहिर सी बात है कि कभी कभार ऐसे फाकों की सूरत हाल हो जाती है कि आम आवाम को अगर देखा जाए, जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा पुख्ता ईमान वाले अफराद हैं और पक्के मोमिन हैं, मुत्तकी परहेजगार अफराद हैं, उनके ऊपर तो जैसी भी मुश्किल आ जाए वो ईमान का रास्ता नहीं छोड़ते। लेकिन अगर माशरे के अंदर उमूमी सूरत हाल देखी जाए तो जहां पर गुरबत आती है वहां ऐसे ऐसे इंसान का दीन ईमान छिन जाता है। इसलिए इंसान दूसरों की जितनी मदद कर सकता है उनकी मदद करे, इस माली मदद के जरिए इंसान उनकी ईमानी मदद भी कर रहा होता है, उनकी ईमान को भी बचा रहा होता है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि ए ताइरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तो काश इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी सूरत हाल हमारे भाइयों के दरमियान पैदा हो रही है कि वाकई वो गुरबत के शिकार भी हैं, तो अपने ईमान को इंसान न बेचे, अपने ईमान को मजबूत रखे। कैसी कैसी परेशानियां अंबिया पर और साहबा कराम पर और अंबिया के असहाब पर नहीं आई है, आइमसलाम के असहाब पर नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ईमान का रास्ता नहीं छोड़ा। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि चंद एक मिसालें भी आपके सामने बयान करूं। तो बहरहाल जिम्मेदारी बनती है कि इंसान अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करे कि दूसरों के सामने दस सवाल न फैलाए, परवरदिगार से मांगे, इंशाल्लाह परवरदिगार रास्ते तैयार करेगा। अलबत्ता परवरदिगार ने एक ड्यूटी ये भी रखी है कि दुआ के साथ साथ दवा भी करे। हजरते दाऊद अलैहिस्सलाम पर परवरदिगार आलम ने यह वही नाजिल की कि या दाऊद इन्नका निअमल अब्द, जाहिरन ये अल्फाज हैं, ए दाऊद तुम मेरे बेहतरीन बंदे हो, लेकिन एक जो छोटी सी बात है वो ये है कि तुम अपना खर्चा निकालते हो बैतुल माल से। चूंकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बहरहाल बादशाह वक्त थे, हाकिम वक्त थे, तो कहा कि ए दाऊद तुम बड़े इबादत गुजार हो, बड़े मुत्तकी परहेजगार हो, सारी तुम्हारे अंदर क्वालिटीज मौजूद हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज ये है कि तुम अपना खर्चा बैतुल माल से निकालते हो। जैसे जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम पर ये वही नाजिल हुई, रोने लगे, गिरिया फरमाया और बहुत शिद्दत से गम महसूस किया कि परवरदिगारा मैं मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई कि जिसके बाद तुम मुझसे नाराज होगी, और इस अंदाज से मुझे कहा कि मैं काम ना करूं। देखिए नबी खुदा हो, बाईमान अफराद हो, फौरन से चौंक जाते हैं, अपने उस खामी को दूर करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर रास्ते तलाश करना शुरू किए कि मैं क्या करूं कि जिसके बाद मैं बैतुल माल से बेनियाज हो जाऊं। तो परवरदिगार ने इल्हाम भी फरमाया और ये कुदरत और ताकत भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई कि वो फिर जरा बनाया करते थे, लोहे की ढाल बनाया करते थे और फिर उस ढाल को बेचकर अपना खर्चा उठाया करते थे। और रिवायत का जुमला यह है कि रोजाना इतनी मेहनत करते थे कि रोजाना एक ढाल तैयार करते और उसे 1000 दिरहम में बेचा करते थे, और इस तरीके से साल भर उन्होंने 360 ढाले बनाई और उसे 1000 1000 दिरहम के अंदर फरोख्त किया। तो अंबिया किराम ने भी मेहनत मजदूरी का रास्ते अख्तियार किया है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मस्जिद सहरा इंसान जाते ज्यारत करने के लिए, इंशाल्लाह परवरदिगार 4 मासूमीन की ज्यारत और तमाम मुकद्दस मकामात की ज्यारत हम सबको नसीब फरमाए। तो वहां पर जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम का मकाम मौजूद है और वाकई वहां के बारे में रिवायत भी यह है कि शायद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वहां बैठकर खयाती किया करते थे। खयाती यानी कपड़ों को सिया करते थे, और ये उनके उस जमाने में शुगल था और ये उनका काम था। और खुद नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद मुअज्जल फरजों में शाह फरमाते हैं कि मा बअथल्लाहु नबियन, परवरदिगार ने कोई नबी मबऊस नहीं फरमाया है मगर ये कि वो जानवरों को चराया करते थे। यानी वैसे अगर देखा जाए तो शायद आज के दौर के एतबार से कोई बहुत अच्छा शुगल ना हो, लेकिन हर नबी ने कोई ना कोई काम किया है। ऐसा नहीं था कि जो हमारे जहन में कभी कभार तस्वर बना होता है कि अंबिया कराम है तो मस्जिद में बैठे होंगे, मसल्ला बिछा होगा, सिर्फ नमाजें सजदे इबादतें होती होंगी। ये भी इबादत का हिस्सा है कि इंसान वाजिब नफका लेकर आए, लोग घर वालों की बिलखसूस वसअत पैदा करे, ये भी इंसान की जिम्मेदारियों के अंदर शामिल है। कल की गुफ्तगू के अंदर एक रिवायत भी आपकी बयान की थी कि नबी अकरम के मौलाना मुत्तकियान शाह फरमाते हैं कि लिल मुमिनि सलासु साआतिन, मुमिन की जिंदगी में 3 घड़ियां होनी चाहिए, 3 लम्हात होने चाहिए, अपनी जिंदगी को इस तरीके से मैनेज करें। कि जिंदगी का एक हिस्सा युनाजी फीहा रब्बा, परवरदिगार से मुनाजात करने वाला हो, और जिंदगी का फिर एक हिस्सा वसातुन यरुम माशा, अपनी माशी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करे। और तीसरा हिस्सा जिसके बारे में आज हम गुफ्तगू भी करेंगे कि इस सूरत हाल के अंदर जो अभी माह रमजान के अंदर हमें नजर आ रही है और 2020 के साल के अंदर हमें नजर आ रही है, वो ये है कि लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, घरों में बैठकर बिलखुसूस मर्द हजरात बेचैनी की कैफियत के अंदर हैं। बहरहाल चूंकि रिवायात के अंदर भी आया है, साइकोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि मर्द मर्दों की जिम्मेदारी है कि घर से बाहर निकलें, चाहे कोई काम ना भी हो तब भी वो घर से बाहर निकलें, एक फ्रेशनेस महसूस करते हैं अपनी जिंदगी में, ताजगी महसूस करते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर मर्द भी घर के अंदर बैठे हुए हैं और घर के अंदर एक बोरिंग फिजा कायम हो रही है, एक डिप्रेशन की फिजा कायम हो रही है और समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हम फजूल में अपना वक्त जाया कर रहे हैं और टाइम पास हो रहा है, तो इंसान डिप्रेस हो जाता है और ऐसी कैफियत से कैसे निकला जाए। उस कैफियत से निकलने के लिए यही इसी रिवायत को मुकम्मल कर रहे हैं कि मौलाना मुत्तकियान ने फरमाया कि जिंदगी के अंदर एक हिस्सा क्या होना चाहिए, आखिरी सवाया फरमाया वसातुन युखल्ली बैना नफ्सिही व लज्जतिहा फीमा यहिल्लु व यजमुलु, फरमाया और जिंदगी का एक हिस्सा ऐसा भी होना चाहिए जिसमें इंसान हलाल तफरी हासिल करे, बैना नफ्सिही व लज्जतिहा, जो हलाल लज्जात हैं उसको हासिल करें, फीमा यहिल्लु व यजमुलु, जो हलाल भी हैं और अच्छी भी हैं। तो ये जो तफरी सालिम जिसे कहा जाता है, जो मुफीद तफरी होती है, वो इस्लाम में मना नहीं है और कभी कभार मोमिनीन के लिए जरूरी होता है कि इस तरीके से अपने आप को दोबारा से हशाश वशाश करें, क्योंकि परवरदिगार पसंद नहीं करता कि इंसान ऐसी इबादत करे कि जिसमें हशाशियत ना पाई जाती हो। मैं आपकी खदमत में एक रिवायत और पेश करता हूं, नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम, इरशाद फरमाते हैं। और किससे इरशाद फरमाते हैं? मौला मुत्तकियों से इरशाद फरमाते हैं, या अली इन हाज़ा दीन मतीन, ए अली ये दीन खूबसूरत दीन है, मोहकम और मजबूत दीन है, इस दीन के अंदर सारी चीजें शामिल हैं, फऊगल फीही बिरफ़्क़िन, तो इस दीन में इंसान जाए और दाखिल हो तो नरमी के साथ दाखिल हो, वला तुबग्ग़िज़ इला नफ्सिका इबादत रब्बिक, और अपने नफ्स को इतना मजबूर ना करो इबादतों के ऊपर कि तुम अपने रब की इबादतों से नाउज़ुबिल्ला नफरत पैदा करने लगो। कभी कभार इंसान या बिलखुसूस बच्चों को मां बाप इतना कहते हैं कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, फला इबादत अंजाम दो, फला काम करो फला काम करो, कि बच्चे मुतनफिर हो जाते हैं उससे। तो दीन लोगों को इबादत से मुतनफिर करने के लिए नहीं आया। वो आपने मशहूर वाकया सुना होगा जो लतीफे की शक्ल में भी है और जाहिरन शायद ये हकीकी वाकया है कि जब एक मोमिन ने किसी को मुसलमान किया, ईसाई था उसके बाद मुसलमान हो गया, तो मुसलमान होने के बाद उसने कहा कि ठीक है अब आप कल से नमाज फजर पर आइएगा, तो नमाज फजर पढ़ने के लिए वो ईसाई जो नया मुसलमान हुआ तो पहुंच गया मस्जिद, जैसे मस्जिद पहुंचा तो अभी फजर का वक्त हुआ नहीं था, कहा कि ना आप नमाज शब पढ़ लें, नमाज शब शुरू कर दी, उसके बाद जैसे ही फजर का वक्त हुआ कहा फजर का वक्त हो गया है, जब फजर पढ़ ली कहा कि अब मैं जाना चाहता हूं अपने घर, कहा कि अभी रुक जाइए ताकीबात नमाज बाकी है, ताकीबात पढ़िए, ताकीबात पढ़ ली कहा थोड़ी देर के लिए और रुक जाइए, ये दुआएं हैं ये मुनाजात है ये मुकम्मल कीजिए, उसको मुकम्मल करते करते जवाल का वक्त हो गया, कहा रुक जाइए अब नमाज जोहरैन पढ़नी है, जोहर पढ़ी उसके बाद उसकी ताकीबात पढ़ी, फिर असर पढ़ी उसकी ताकीबात पढ़ी, मगरिब पढ़ी ईशा पढ़ी, पूरा दिन उसका मस्जिद में इसी तरीके से उस मुसलमान ने गुजार दिया, और वो बेचारा ईसाई मुसलमान इसी तरीके से दीन पर अमल करता रहा, समझा कि यही पूरा दीन है, यहां तक कि जब ईशा की नमाज से फारिग हुआ और मस्जिद से उसको इजाजत मिली निकलने की, तो कहता है कि अब मैं सिर्फ मस्जिद से नहीं निकल रहा, मैं इस्लाम से भी बाहर निकल रहा हूं, कि मुझे ऐसा इस्लाम नहीं चाहिए कि जो सिर्फ मस्जिद में इंसान को बिठा दे और सिर्फ नमाज 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 का हुक्म दे। ये सभी के अंदर काबिलियत नहीं होती कि हर इंसान इतनी नमाजें पढ़ सके, ये बाज हस्तियां ऐसी होती हैं कि जो रोजाना हजार हजार रकतें नमाज पढ़ें और फिर भी ना थके और लज्जत महसूस करें। नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम, उनके बारे में जुमला यह है, वो इरशाद फरमाते हैं कि जो आइला قرت عینی فی الصلاة, کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو قرار دیا ہے نماز کے اندر. تو نماز سے اتنا عشق ہے نبی اکرم کو, یا ایہا المدثر ہو یا ایہا المزمل ہو, کہا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا, آپ نماز کے لیے رات میں کھڑے ہوا کیجئے لیکن ذرا کم ہوا کیجئے. تو یہ ہستیاں اور ہیں. ایک مرتبہ نبی اکرم نے حضرت ابو ذر غفاری سے مخاطب ہو کر کہا, یا ابا ذر, اے ابو ذر, جو بھوکے ہوتے ہیں کھانا مل جائے تو ان کی بھوک مٹ جاتی ہے, جو پیاسے ہوتے ہیں انہیں پانی مل جائے تو ان کی پیاس مٹ جاتی ہے, لیکن میں نماز کا ایسا عاشق ہوں کہ میں نمازیں پڑھتا رہوں لیکن میری نماز کی پیاس ختم نہیں ہوتی. میں عاشق نماز ہوں. تو ہر انسان اس مرحلے پر نہیں ہوتا. بعض افراد اور عام جو مسلمان ہیں, عام مومن ہیں, ان کو بہرحال ضرورت پیش آتی ہے کہ اپنے فیول کو دوبارہ سے لیں, حاصل کریں, اپنی دوبارہ سے ٹیوننگ کریں, اور اس کے بعد پھر عبادات کی طرف آئیں, اور اس کے بعد دوسرے کام کاج کی طرف آئیں. تو حلال تفریح اسلام میں منع نہیں ہے, بلکہ باقاعدہ بعض روایتوں کا جملہ بھی یہ ہے کہ جو یہ ایک حصہ رکھتا ہے حلال لذات کے لیے, فإن هذه الساعة عون لتلك الساعات, حدیث کا جملہ یہ ہے کہ یہی حلال لذات وہ ہیں کہ جو مدد کرتی ہیں کہ انسان صحیح بہتر انداز میں نماز بھی پڑھ سکے, بہتر انداز میں رزق حلال بھی کما سکے, بہتر انداز میں اپنے دوستوں سے گفتگو کر سکے, بہتر انداز میں اپنا محاسبہ کر سکے, بہتر انداز میں اپنے بچوں کو وقت دے سکے. یہ ساری چیزیں ممکن ہوتی ہیں جب انسان تھوڑا سا وقت حلال لذات کے لیے اور حلال تفریح کے لیے نکالتا ہے. البتہ ایسا بھی نہ ہو کہ جب یہ اس کی اجازت مل گئی تو انسان اس میں اتنا افراط کر دے کہ ساری زندگی سارا وقت انسان تفریح کے اندر گزار دے. کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اتنا سوتے ہیں, اتنا آرام کرتے ہیں, اتنا آرام کرتے ہیں کہ آرام کر کر کے بھی تھک جاتے ہیں. تو انسان ایسی کیفیت کے اندر بھی مبتلا نہ ہو جائے. یہ وقت اس لیے نکالا ہے تاکہ دوسرے اوقات کے لیے انسان اس سے مدد حاصل کر سکے. اور پھر ہمیں انبیاء کرام کی زندگی میں, اولیاء کرام کی زندگی میں جا بجا اس کی مثالیں نظر آتی ہیں, کیونکہ خود نبی اکرم نمونے عمل ہے ہم سب کے لیے. انہوں نے وہ معاشرہ تشکیل دیا ہے جس میں صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو بتاتے رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیز جائز ہے تمہارے لیے. اگر انسان اس کی طرف آتا ہے تو کبھی بدن مضبوط ہوتا ہے, کبھی ذہن مضبوط ہوتا ہے, کبھی انسان کی روح نشاط حاصل کرتی ہے, انرجی حاصل کرتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن حرام نہ ہو, غیر شرعی نہ ہو. اس لیے نبی اکرم ایک مرتبہ, بلکہ کئی ساری روایات کے اندر, شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر اس طرح کی روایتیں جا بجا موجود ہیں کہ نبی اکرم کبھی کبھار گھڑ سواری کا مقابلہ کروائے کرتے تھے بلکہ خود اس کے اندر شریک ہوا کرتے تھے, کبھی شتر سواری کا, اونٹ کی سواری کا مقابلہ کروائے کرتے تھے بلکہ خود اس کے اندر کبھی کبھار شریک ہوا کرتے تھے. اور جب جب نبی اکرم شریک ہوئے ہیں کسی بھی مقابلے کے اندر, تو ظاہر سی بات ہے نبی اکرم ہی کامیاب ہوا کرتے تھے. تو جب نبی اکرم اتنا مسابقے کے اندر, مقابلے کے اندر شریک ہوا کرتے تھے اور ہمیشہ کامیاب ہوا کرتے تھے, تو ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اس بار میں کامیاب نہیں ہوں گا, میں بظاہر جو یہ جو جیت ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہوگی. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا, حیران کی ہوئی کہ آپ نبی ہیں, آپ وہی ہیں جو ہمیشہ سے جیتتے ہوئے آئے ہیں, اور یہی آپ کا جو اونٹ ہے وہ بھی وہ ہے کہ جو ہمیشہ آپ کو جتواتا ہوا آیا ہے, آج کیوں آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ تو نبی اکرم نے اس کی وجہ بعد میں بیان فرمائی. جب یہ مقابلہ ہوا تو اس وقت نبی اکرم اور جناب اسامہ کا مقابلہ تھا اونٹ سواری کے اندر, اور نبی اکرم کو اس مقابلے کے اندر, بہرحال وہ ایک سالم تفریح کی خاطر تھا, ایک دوبارہ سے انسان کو انرجائز کرنے کے لیے تھا, اس کے اندر بظاہر نبی اکرم کو شکست ہوئی. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا اور ایسا ہی ہوا, آخر اس کے اندر ماجرا کیا ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ اس سواری پر جب جب میں سوار ہوا ہوں تو میں نے ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہے, میں ہمیشہ جیتا ہوں, جس کی وجہ سے خود اس جانور کے اندر غرور یہ پیدا ہو گیا کہ میں ہمیشہ جیت جاتا ہوں. اور جب انسان کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے تو پروردگار اسے پھر شکست کا مزہ بھی چکھاتا ہے. یعنی نبی اکرم نے یہاں پر گویا کھیل ہی کھیل کے اندر صحابہ کو درس بھی دے دیا کہ دیکھو غرور میں مبتلا نہ ہونا. परवरदिगार के हाथों में है फतह देना और शिकस्त देना, लिहाजा खुदा पर भरोसा करना और हमेशा अपनी भरपूर मेहनत का मुजाहरा करना और भरपूर अपनी ताकत लगाना किसी चीज में कामयाबी हासिल करने के लिए। जहां इंसान के अंदर गुरूर पैदा हो जाता है कि मुझसे बड़ा और कौन है, मैं तो हमेशा जीत जाता हूं, मैं तो हमेशा कामयाब होता हूं, परवरदिगार उसे शिकस्त का मजा भी चखा देता है। तो नबी अकरम इस तरीके से मुकाबला किया करते थे। और इसी तरह का इसी मुकाबले के अंदर एक और हमें दर्स भी मिलता है कि सब साथ दे रहे थे नबी अकरम का, सबकी जबान पर था या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, नबी अकरम जीतेंगे, नबी अकरम कामयाब होंगे, और किसी की जबान पर भी उसामा का नाम नहीं था। तो खुद नबी अकरम ने नारा लगाने शुरू किया कि या उसामा, यानी उसामा कामयाब हो, उसामा कामयाब हो, उसामा कामयाब हो, उसे भी हौसला दे रहे थे। तो आपने कभी भी दुनिया के मुकाबलों के अंदर ऐसा मंजर नहीं देखा होगा कि जो सामने वाली टीम है वो ये कहे कि फला टीम जीत जाएगी और सामने वाली टीम जीत जाएगी, हमेशा वो अपनी टीम को जीतने की बात करती है। तो जो दुनियावी मादी मुकाबले होते हैं उसमें इंसान अपनी मादी कामयाबी की वजह से दूसरों की नफ्सियात की ना फिक्र करता है, ना दूसरों की रूहानी तरबियत की फिक्र करता है, इंसान अपने जाती मफाद के लिए गेम लड़ रहा होता है। लेकिन नबी अकरम ऐसे मकाम पर भी तरबियत करना चाहते थे कि अगर कोई उसका साथ देने वाला नहीं है तो मैं खुद उसी का साथ देने वाला बन जाऊंगा और उसके हौसले को मैं बुलंद करूंगा। इस तरीके से नबी अकरम ने वहां पर भी तरबियत फरमाई कि ये जो जाहिरी दुनियावी मुकाबले हैं इसकी कोई हैसियत नहीं है, असल मुकाबला तकवा के मैदान में है, असल मुकाबला नमाज और इबादात के मैदान में है। और कुरान करीम की आयत भी है कि साबिकु इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्ना, एक दूसरे के साथ मुसाबका करो, मुकाबला करो, किस चीज के अंदर, परवरदिगार की जन्नत हासिल करने में और परवरदिगार की मगफरत हासिल करने में एक दूसरे से मुकाबला करो। तो नबी अकरम ये बयान फरमा चाह रहे कि इस दुनियावी मुकाबले की कोई हैसियत नहीं है, लिहाजा मैं उसका साथ दे रहा हूं, इसको भी खुश कर रहा हूं। तो इस तरीके से नबी अकरम ने बाज मुकाबलों के अंदर हिस्सा फरमाया है। एक रिवायत यह भी कहती है कि एक काफिर आया और नबी अकरम की खिदमत में आकर कहने लगा कि जाहिरन यही जुमले अदा किए होंगे नाउजबिल्ला नाउजबिल्ला कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हारा दीन ठीक और सच्चा दीन है तो मुझसे मुकाबला करो। कैसा मुकाबला? कहा कि मैं पहलवान हूं, मुझसे कुश्ती लड़ो, अगर कुश्ती में मैं जीत गया तो इसका मतलब मेरा दीन ठीक था और अगर आप जीत गए तो आपके दीन पर मैं आ जाऊंगा। नबी अकरम अल्लाह अकबर इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, नबी अकरम अखलाक के आला तरीन मेयार पर फाइज थे। कभी कभार हमें अफसोस होता है कि हम तो घर के अंदर भी इस तरह का माहौल अपने बच्चों को नहीं देते कि उनके साथ गेम्स के अंदर, उनके साथ खेल के अंदर शरीक हों। नबी अकरम बाहर सहाबा के मजमे में, अजनबियों के मजमे में इस तरीके से उस पहलवान के सामने बाकायदा हाजिर होते हैं, कहते हैं कि हां अगर तू इस बात पर ईमान लेकर आएगा तो मैं तुझसे कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूं। और बाकायदा नबी अकरम की उस काफिर के साथ कुश्ती हुई और नबी अकरम ने पछाड़ दिया। लेकिन जब शिकस्त खा गया तो कहने लगा कि नहीं, एक दफा फिर होना चाहिए मुकाबला, हो सकता है कि इत्तेफाक से आप जीत गए हो, दोबारा मुकाबला हुआ, नबी अकरम ने दोबारा से पछाड़ दिया। कहने लगा नहीं, एक और दफा होना चाहिए मुकाबला, फिर नबी अकरम ने उससे कुश्ती लड़ी और फिर तीसरी मर्तबा भी उसे पछाड़ा तो जबान से जुमले जारी हुए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहु। तो नबी अकरम की जिंदगी के अंदर ये नमूने हमें नजर आते हैं, जब नबी अकरम बाहर इस तरीके से इतनी नरमी के साथ, इतनी हशाशियत के साथ जिंदगी गुजारते थे, तो कम से कम हम लॉकडाउन के अंदर अगर घर के अंदर महसूर भी हैं तो घर वालों को वक्त दें, अच्छी सालिम तफरी मुहैया करें जिसके अंदर सारे घर वाले शरीक हों, बच्चों की तरबियत का सामान भी उसके अंदर हो कि अगर कोई हारता है तो इसका मतलब नहीं कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, हार जीत जिंदगी में होती रहती है। और एक दूसरे को हौसला देना, जिंदगी में हार का मजा चखाना यह भी जरूरी होता है। और घर के अंदर ये जो माहौल बनता है उसके बाद मोहब्बतें पैदा होती हैं। तो घरों के अंदर मां बाप को चाहिए कि औलाद को वक्त दें और औलाद के साथ जितना नरमी के साथ इंसान सुलूक कर सकता है नरमी के साथ सुलूक करने की कोशिश करें, क्योंकि फिर यही अफराद वो होते हैं कि जो आगे चलकर हमारी कौम की मेमार भी बनते हैं, हमारे दीन और मजहब की मेमार भी बनते हैं, और इस तरीके से ये मोहब्बत नस्लों में जारी होती है। और फिर कुरान करीम को भी अगर देखें तो कुरान करीम के अंदर भी वो वाकया मौजूद है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी आई अपने बाबा के पास, क्या कहा? बाकायदा जुमले ये है कुरान करीम के कि हमें हमारे साथ यूसुफ को भेज दें, अरसलहू, हमारे साथ यूसुफ को भेज दें। क्यों भेज दें? गदन, कल के दिन क्यों भेज दें? यरतअ व यलअब, ताकि हम उसे भरपूर खाना भी खिलाएं, हम खुद भी खाएं, खाएं और खेलें, यानी तफरी करें, वहां जाकर हलाल जो तफरी है उसको हासिल करें, सैर तफरी करने के लिए निकले। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा कि तफरी इस्लाम में मना है, तफरी हमारी शरीयत में मना है, क्यों तुम सैर और तफरी की और खेलकूद की बात करते हो, ये हमारे मजहब में जायज नहीं है। बल्कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वहां दूसरे खौफ का इस तरफ इशारा फरमाया कि मुझे खौफ है कि कहीं यूसुफ को भेड़िए ना खा जाए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यूसुफ को नहीं भेज सकता। और फिर बाद में इसरार हुआ और फिर नबी खुदा ने दूसरे नबी खुदा को भेजा। अगर वैसे ही इस्लाम में मना होता कि सैर तफरी मना है, नहीं जा सकते, तो फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम डायरेक्ट ये कह देते कि इस्लाम में ये चीज जायज नहीं, हराम करार दी गई है। लेकिन खुद नबी खुदा जानते हैं ये जरूरियात जिंदगी में से है कि इंसान बाहर निकले। और बहरहाल यहां अगर आजकल लॉकडाउन की सूरत हाल है बाजों के ऊपर और नहीं निकल सकते इंसान, तो कम से कम घर के अंदर वो माहौल पैदा करे कि जो घर को जन्नत बनाने का सबब बने। सही, अच्छी, मुनासिब तफरी मुहैया करना ये हम सब की जिम्मेदारी है, वालदेन की जिम्मेदारी है कि बच्चों किस तरह का माहौल फराहम करें, वरना अगर हमने सही तरह से वक्त नहीं दिया या हम खुद भी सही तरीके से आगाह नहीं हुए तो कहीं हम हराम तफरी की तरफ ना चले जाएं। चाहे हम नामहरम महरम के मसाइल की परवाह ना करें, वो भी हराम है। अगर इंसान खुदा ना खास्ता रक्स, गानों, डांस इसको देख रहा है मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए, हराम तफरी है, इसकी इजाजत नहीं है इस्लाम में। इसी तरीके से अगर इंसान किसी को तकलीफ में मुबतला करके खुश हो रहा है, जैसे बास नौजवान होते हैं उनकी तफियां इस तरह की होती हैं कि किसी को छेड़ दिया, किसी को परेशान कर दिया और उसको करार दिया, कुछ ऐसी तफरियां होती हैं कि जिन तफरियों के अंदर इंसान खुदा से गाफिल हो जाता है, अपने आप से, अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाता है, वो तफरी भी मुनासिब नहीं है। इन सारी तफरीहात को कुरान ने मना किया है, इस्लाम ने मना किया है, लेकिन इसके मुकाबले में जो हलाल और जायज तफरीहात है वो भी हमें पेश की है, ताकि इंसान उन तफरीहात को हासिल करे और सही रास्ते पर रहते हुए इंसान वो ताकत हासिल करे कि जिसके बाद इबादात और दीगर जो वाजिबात है उसको सही तरीके से अंजाम दे सके। दुरूद पढ़ दीजिए मुहम्मद व आले मुहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। चूंकि बात बच्चों की तरबियत की तरफ आई थी तो आज ही हमने एक बेहतरीन खत, बेहतरीन बात हजरत अबू जर गफ्फारी की जबानी रिवायत के अंदर देखी, जो मैं आपकी खिदमत में शेयर करना चाहेंगे और उसके बाद मंजिल मसाइब की तरफ आएंगे। हजरत अबू जर गफारी के मकाम मरतबे से कौन वाकिफ नहीं है? हजरत सलमान फारसी के साथ उनका नाम लिया जाता है, हजरत मकदाद के साथ उनका नाम लिया जाता है, हजरत अम्मार यासिर के साथ उनका नाम लिया जाता है, हजरत बिलाल हबशी के साथ उनका नाम लिया जाता है, और मुकद्दस तरीन, मोतबर तरीन, बेहतरीन सहाबा के अंदर हजरत अबू जर गफारी का नाम शामिल है। और वो मकाम मर्तबा हजरत अबू जर गफारी को हासिल है कि जब मुलाकात करने के लिए आए थे नबी अकरम, तो नबी अकरम ने पहले ही बयान फरमाया था कि जो अभी शख्स आने वाला है वो प्यास की हालत में आएगा, लिहाजा सबसे पहले उसके लिए पानी का इंतजाम करना। जैसे अबू जर गफारी दाखिल हुए पानी पेश किया गया, इत्तफाकन हजरत अबू जर गफारी के पास भी पानी मौजूद था। नबी अकरम सवाल किया, ए अबू जर, तुमने इस पानी से अपनी प्यास क्यों ना मिटाई, क्यों तुमने पानी नहीं पी लिया? सुनेंगे क्या जवाब दिया। फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं जब रास्ते से आ रहा था तो एक ठंडे चश्मे से मैंने पानी भरा और मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं पानी पी लूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि पहले मैं पानी पी लूं और उसके बाद मैं रसूल अल्लाह की खिदमत पेश करूं, मैं इसलिए प्यासा रहा ताकि आप पहले इससे पानी पी लें उसके बाद मैं इस पानी से सैराब हूं। ये इश्क की कैफियत हमें फिर हजरत अब्बास इलमदार में बाद में नजर आती है, और हजरत अब्बास इलमदार की तो शान ही और है कि जो मैदान जंग के अंदर सारी कुर्बानियों के बावजूद भी फिर इस तरह से मुजाहरा किया कि पहले मेरा इमाम पानी पी ले फिर उसका गुलाम पानी पिए। हजरत गाजी अब्बास उन पर हमारे जाने कुर्बान। तो हजरत अबू जर गफारी उस मकाम मरतबे के सहाबी, जब हालात ऐसे हुए कि उन्हें रबजा शहर बदर कर दिया गया, क्योंकि हालात आप जानते हैं खलीफे सिवम का जमाना है, और चूंकि ऐसे ऐसे काम उस जमाने में हुए कि जिसके ऊपर हजरत अबू जर गफारी ने एहतजाज किया। पहले हजरत अबू जर गफारी शाम में मौजूद थे, हाकिम शाम के हरकतों के मुकाबले में एहतजाज किया, तो हाकिम शाम ने बरहना ऊंट पर बिठाकर हजरत अबू जर गफारी को शाम से मदीना भेजा। ये मैंने क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया, इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उस जमाने में भी ऊंट की सवारी होती थी, तो उसके ऊपर अमारी आती थी, उसके ऊपर जहाज लगाया जाता था, जिसे हम अगर आज की जबान में कहें तो सीट लगाई जाती थी, और उसके बाद उस ऊंट के ऊपर सवारी करके इंसान एक शहर से दूसरे शहर जाया करता था। लेकिन हजरत अबू जर गफारी को एक मोटे ऊंट के ऊपर बिठाया और उसके ऊपर कोई अमारी नहीं थी, इसी हालत में उनके साथ एक शख्स को भी रखा जो उनकी निगरानी करता रहे, और इसी हालत में उन्हें मदीना पहुंचाए। तो जब मदीना हजरत अबू जर गफारी पहुंचे तो उनके पाए मुबारक से खून जारी था। यानी ये मैं जो जो अबू जर हजरत अबू जर गफारी के हवाले से पढ़ता जाता हूं, मुझे करबला याद आती जाती है कि जब मौला सईद सज्जाद को अमारियों पर बिठाया गया, मौला सईद सज्जाद के साथ कारवान को जब अमारियों पर बिठाया गया तो उनके भी पाए मुबारक से खून जारी था। उसके बाद जब मदीना पहुंचे तो खुद हाकिम शाम की शिकायत भी की और उस्मान और खलीफा सेवुम के हवाले से भी बातें बयान की, तो खलीफा सेवुम से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने भी हजरत अबू जर गफारी को शहर बदर कर दिया। वो सहाबी के रसूलुल्लाह उनसे मोहब्बत किया करते थे। रसूलुल्लाह ये फरमाते हैं कि जमीन ने किसी का बोझ नहीं उठाया और आसमान ने किसी पर साया नहीं किया जो हजरत अबू जर गफारी से ज्यादा सच्चा हो। ये जो बोलते हैं वो सच और सिद्क फरमाते हैं और सदाकत के अलावा कुछ नहीं बोलते। वो अबू जर गफारी, उनको मदीना से निकाल दिया गया। लेकिन जब खलीफा सबूब ने कहा कि उनको कोई रुख्सत करने नहीं आएगा, इसी हालत के अंदर उन्हें निकाल दिया जाएगा, तो मौलाए मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने खलीफा की बात नहीं मानी। और इससे पता चलता है कि मौलाए मुत्तकीन क्या हैसियत देते थे खलीफा को, कि खलीफा मना कर रहा है और मौला ने कहा कि नहीं, मैं अबू जर गफारी को रुख्सत करने के लिए आऊंगा। ना सिर्फ मौलाए मुत्तकीन हजरत अबू जर गफारी को रुख्सत करने के लिए आए, बल्कि उनके साथ इमाम हसन मौजूद थे, इमाम हुसैन मौजूद थे, जनाब अकील मौजूद थे, बाद रहतों में है कि जनाब अम्मार यासिर मौजूद थे, जनाब हुज़ैफ़ा यमानी मौजूद थे। ये जो जलील कदर अफराद थे ये सब आए हजरत अबू जर गफारी को रुख्सत करने के लिए। और जब हजरत अबू जर गफारी मदीना से रबजा की तरफ तशरीफ ले गए, रिवायत ये कहती है, अल्लामा मजलिसी ने इस बात को जिक्र किया है कि उनके साथ उनके घर वाले भी शामिल थे, उनका बेटा उनके साथ था, उनकी बेटी उनके साथ थी, उनकी जौजा उनके साथ थी। लेकिन जब ये रबजा के मकाम पर पहुंचे हैं तो बयाबान है, खाने पीने के लिए कोई चीज, कोई दरख्त मौजूद नहीं, सही पानी, खुशगवार पानी मौजूद नहीं। परेशानी ऐसी आई कि हजरत अबू जर गफारी की जिंदगी ही में उनके बेटे का इंतकाल हो गया, और जब बेटे का इंतकाल हुआ है तो बेटे के इंतकाल के वक्त हजरत अबू जर गफारी के जुमले ये हैं जो मैं आपकी खदमत में हदिया करना चाहता हूं। फरमाने लगे, रहिमकल्लाहु या जर, क्योंकि खुद का नाम अबू जर था, इसका मतलब यह कि जर के बेटे, जर के बाप, तो कहा कि ए जर, तुझ पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो, लकद कुंत करीम अल खुल्क, तू बेहतरीन अखलाक का मालिक था, बारन बिल वालदैन, अपने वालदैन के साथ नेकी करने वाला था। और फिर आगे जाके शाह फरमाया, वकद शगल अनिल एहतमाम लक अनिल इग्तमाम बिक, और फिर ये जुमला शाह फरमाया, लेकिन मैं तुझ पर गम का इजहार और अफसोस का इजहार नहीं कर रहा, क्योंकि मैं उस हालत को सोच रहा हूं कि जो तेरे जाने के बाद तुझ पर खुद आने वाली है, और तुझ पर जो हिसाबो किताब की कैफियत आने वाली है, उस हिसाबो किताब की कैफियत को सोचने की वजह से मेरा गम और अंधो खत्म हो गया। और फिर आगे शाह फरमाते हैं कि फलई तशरी मा कालु लक वमा कुलत लहुम, ऐ काश मुझे पता चल जाए कि ये फरिश्ते तुझसे आकर क्या सवाल कर रहे हैं और तू उन्हें क्या जवाब दे रहा है। अल्लाह अकबर, क्या मारिफत का आलम है। यानी ऐसे मौके पर भी खुद अपनी कब्र भी हजरत अबू जर गफारी को याद है और अपने बेटे के बारे में फिक्रमंद है, तो उनके ईमान के बारे में बेटा तुम क्या जवाब दोगे और वो तुमसे क्या सवाल करेंगे। जुमले और भी हैं, वक्त की तंगी में ऐसे हम बातों को छोड़ रहे हैं। यहां तक कि एक वक्त वो आया कि जब हजरत अबू जर गफारी की जौजा का भी इंतकाल हो गया, बेटे का इंतकाल बर्दाश्त किया, जौजा का गम बर्दाश्त किया, और फिर कैफियत वो आई कि खुद हजरत अबू जर गफारी भी 3 दिन की भूख के बाद अब सकत नहीं थी कि खड़े हो सके। अपनी बेटी से कहा कि बेटी मुझे उस रास्ते तक पहुंचा दो कि जो कूफा से आता है। बेटी ने बाप को सहारा दिया, वहां तक पहुंचाया और रोने लगी, कहने लगी कि बाबा जान आपके जाने के बाद मेरी क्या हालत होगी, मेरा कौन सहारा बनेगा, मैं यहां पर तनतनहा हूं। लेकिन हजरत अबू जर गफ्फारी को इत्मीनान था और मुस्कुरा कर वो हदीस रसूलुल्लाह की सुनाई कि बेटी रसूलुल्लाह ने मुझसे फरमाया था एक वक्त वो आएगा कि तू तनहा इस दुनिया से जाएगा, बल्कि पूरी हदीस ये है कि अबू जर तुम तनहा आए हो, तनहा जिंदगी गुजारोगे, तनहा तुम्हें मौत आएगी, तनहा तुम्हें कयामत के मैदान में खड़ा किया जाएगा और तनहा तुम जन्नत में दाखिल होगे। और बेटी मेरे जाने के बाद एक कारवान आएगा जो मोमिनीन का कारवान होगा, तुम उनके साथ हो जाना, वो तुम्हें हिफाजत के साथ अपने वतन पहुंचा देंगे। बस ये जिंदगी के जो आखिरी लम्हात थे, क्या देखा कि एक कारवान आया। और रिवायती इसके अंदर भी मुख्तलिफ है, लेकिन अक्सर रिवायात के अंदर इस कारवान में एक जलील कद्र साहबी जनाबे मालिक के अश्तर के नाम से भी मौजूद थे। और उन्होंने जब हजरत अबू जर गफ्फारी को देखा तो बहुत सारी बातें उनसे कही, जो वहीं के रहने वाले अफराद थे, रबजा वाले, उन्होंने भी बातें कही। कहने लगे कि ए अबू जर तुम्हें किसी चीज का शिकवा तो नहीं है, सुनेंगे क्या कहने लगे, फरमाने लगे कि हाँ मुझे शिकवा है, तो अपने गुनाहों का मुझे शिकवा है, मैंने वैसी जिंदगी नहीं गुजारी जैसी परवरदिगार ने मुझसे मांगी थी। फिर लोगों ने कहा कि किसी चीज की तुम्हें तलब हो रही है, जाहिर सी बात है कि भूख और प्यास की कैफियत थी, मर्ज की हालत थी, जयीफी की हालत थी, किसी चीज की तुम्हें तलब हो रही है, तो हजरत अबू जर गफारी ने कहा कि हाँ मुझे रहमत परवरदिगार की तलब हो रही है। अल्लाह अकबर। फिर कहने लगे कि आपके लिए किसी तबीब का इंतजाम करें, तो सुनेंगे क्या कमाल का जुमला कहा, कहने लगे कि जो मेरा तबीब है उसी ने तो ही मुझे बीमार किया है और वही चाहता है कि मुझसे मुलाकात करें, लिहाजा अब मैं दुनिया से जाकर उस बाकी दुनिया की तरफ रवाना हो रहा हूं। और हजरत अबू जर गफारी इस तरीके से गुर्बत के साथ रबजा में मारे गए। लेकिन मैं कहूंगा ए अबू जर गफारी, हम आपकी दास्तान पढ़ रहे थे तो हमें तो करबला की दास्तान नजर आ रही थी, वहां पर भी कोई अपने वतन से दूर था, वहां पर भी कोई वो था कि जिसने अपने बेटे का लाशा पहले उठाया है, अपने असहाब के लाशें पहले उठाए हैं, अपने गोद के बालों के लाशें पहले उठाए, और वहां पर भी कोई था कि जो 3 दिन का भूखा प्यासा था, और वहां पर भी कोई था कि जिसकी बेटी जिंदा थी और बेटी को यतीमी के साथ छोड़कर जाना था। लेकिन मुझे कहने दीजिए ए हजरत अबू जर गफारी, आपकी वफात में और नवाज़े रसूल की शहादत में फर्क है, बल्कि फर्क तो बहुत है। आप रसूल अल्लाह के सहाबी हैं, वो रसूल अल्लाह के नवासे थे, आप भी रसूल अल्लाह के आंखों का तारा हैं, लेकिन वो रसूल अल्लाह के दिल के चैन थे। और जब वो करबला की सरजमीन पर शहीद किए गए हैं, तो ऐसे शहीद ना किए गए बल्कि पहले 72 की लाशें उठाए, 3 दिन की भूख और प्यास बर्दाश्त की है,
और बार बार फौज लश्कर के सामने अपना तारुफ करवाते रहे, मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मेरे नाना रसूल खुदा है, मेरी नानी खदीजा ताहिरा है, मेरे बाबा अली मुर्तजा है, मेरी माँ फातिमा जहरा है, मैं खाने काबा का मालिक हूँ, मैं सफा और मरवा का वारिस हूँ, मैं जमजम का मालिक हूँ, तुमने क्यों मुझ पर पानी को बंद कर दिया? मैंने तुम्हारे मर्दों में से किसी का क्या कत्ल किया है? क्या तुम्हारी इज्जत और आबरू लूटी है? मैंने किसी को क्या तकलीफ पहुंचाई है कि तुम मेरी जान के दुश्मन बन गए? लेकिन सबका जवाब आता है तो एक ही जवाब आता है, बोगजल अबीक, हम तुम्हारे बाप से भी दुश्मनी रखते थे, तुम्हारे नाना से भी दुश्मनी रखते हैं, और ऐसे दुश्मनी निकाली कि ये इमाम जब अपनी बेटी से रुखसत होकर निकलते हैं तो ये कहते हैं, या सुकैना, या फातिमा, या ज़ैनब, या उम्मे कुलसूम, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, ए बेटियों, ए बहनों, मैं तुम पर सलाम आखिर भेज रहा हूं। ये कहने के बाद आका बाहर तशरीफ ले आए, जैसे ही घोड़े पर सवार हुए, क्या देखा कि घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, अब जो नजरें नीचे झुकाए तो क्या देखा, अपनी चार साहब अपने 4 साल बच्ची को देखा। एक बड़ा बेटी ने सवाल किया, या बा इस तस्लम तलिल मौत, बाबा जान क्या मरने के लिए जा रहे, बाबा जान क्या आप भी शहीद होने के लिए जा रहे हैं? मौला ने फरमाया, कई फला यस्तस्लिमु मल्ला नासर लहू वला मोईन, वो कैसे अब खुद मौत की तरफ ना जाए जिसका कोई नासर मददगार नहीं बचा। ये कहने के बाद जब आगे बढ़े, बेटी ने आवाज दी, या बता रुद्दा इला हरम जद्दिना, बाबा जान अगर मरने के लिए जा रहे हैं तो हमें नाना के मदीना छोड़कर। वाह हजरत अबू जरे गफारी की बेटी भी जिला वतन रही, वतन से बाहर अजनबी शहर में रही, यहां सगीरा भी परदेश में रही, लेकिन सुने के फर्क क्या था? फर्क ये था, वहां मोमिनीन का कारवां आता है और बड़े प्यार और शफकत के साथ उसे वतन लेकर चला जाता है, लेकिन यहां जब बाबा शहीद हुए, अजीब आंधी चली, सुलझना जख्मी हालत में खेमे की तरफ आया। बेटी ने कहा, ए सुलझना या जवादू हल सुकिया भी अम कुतला शाला, ए मेरे बाबा के घोड़े, ये बता जब मेरे बाबा को शहीद किया जा रहा था तो पानी दिया था या प्यासा ही मार दिया गया? ये कहने के बाद सगीरा ने अपने आप को छुपाया, कहीं कोई चादर छीनता है, कहीं कोई ताजिया ने मारता है, कोई तमाचे लगाता है, बाबा जो आपके सीने पर सोया करती थी अब उसे शहर ब शहर फिराया। أَلَا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ। परवरदिगार इन आंसू को रुमाल हजरत सैयद कायनात में जगह इनायत फरमा, इन आंसू के सदक़े में हमारे तमाम गुनाह कबीरा सगीरा की मगफिरत फरमा, हमारे मरहूमीन की मगफिरत फरमा, माह मुबारक रमजान की सारी रहमत बरकत मगफरत हासिल करने की हम सबको तौफीक अता फरमा, इस माह मुबारक में तिलावत कुरान करीम करने की हम सबको ये सआदत अता फरमा, परवरदिगारा चारदा मासूमीन की ज्यारतें हम सबको अता फरमा, मुकद्दस मकामात बिलखसूस बैतुल्ला की ज्यारत से हम सबको मुशर्रफ फरमा, परवरदिगारा तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद का जज्बा अता फरमा, परवरदिगारा जो कोरोना के नाम से वबाई मर्ज आया है तमाम आलम इंसानियत को उससे निजात अता फरमा, परवरदिगारा अगर ये मुश्किलात मसाइब हमारे हक में बेहतर है तो उस पर सब्र शुक्र करने की तौफीक अता फरमा, पालने वाले तमाम मजालिम से इंतकाम के लिए अपनी आखिरी हुज्जत इमाम असर व जमा के जहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आशिकीन मुहिब्बीन सच्चे चाहने वाले और मानने वालों में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
برحمتك يا أرحم الراحمين.